पाठ 21 अध्याय 14 अध्याय 13 में मूसा के माध्यम से यहोवा ने सिखाया कि कैसे तजारात को उसके कई रूपर्वों में पहचाना जाए, यहां तक कि कपड़ों और चमड़े से बनी वस्तुओं पर भी तजारात को पहचाना जाए। इस तरह का निर्णय लेना हमेशा से ही पुजारी का काम रहा है। एक आम इसराइली केवल उस पुजारी के निर्णय का पालन कर सकता था। हमें याद रखना चाहिए कि पुजारी न तो कोई उपचारक था और न ही कोई डॉक्टर जो चिकित्सा निदान करता था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक निदान था जिसकी आवश्यकता थी। तजारात को जैविक बीमारी के रूप में नहीं देखा गया था, यह एक दिव्य पीड़ा थी जो एक अस्वीकार्य, यहोवा को अस्वीकार्य आध्यात्मिक स्थिति से उत्पन्न हुई थी। यह एक सजा थी। इसलिए संक्षेप में पुजारी को एक ठोस दृश्यमान साधन का उपयोग करना था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आंतरिक अदृश्य आध्यात्मिक स्थिति का निर्धारण किया जा सके। स्वाभाविक रूप से इन दृश्यमान पपरी और घावों को परमेश्वर के मानक के अनुसार साफ और अशुद्ध की श्रेणियों में सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया था। सभी त्वचा रोग तजारात नहीं थे, केवल वे ही जिन्हें लैव्य व्यवस्था 13 में कहा गया है, और यह केवल वे विशेष त्वचा रोग थे जो ये संकेत देते थे कि मेत्सोरा, जो इस रोग से पीड़ित है, धार्मिक रूप से अशुद्ध था, इब्रानी में तमई। अब अध्याय 14 में अशुद्धता से शुद्धिकरण के अनुष्ठानों का परिचय दिया गया है। लैव्य व्यवस्था 13 में तजारात के बारे में सभी सूक्ष्म विवरण दिए गए हैं, लेकिन अध्याय 14 बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहोवा इन अनुष्ठान शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की जर और उद्देश्य को उजागर करता है। अध्याय 14 में उन प्रक्रियाओं की सूची दी गई है जिनके द्वारा एक मेत्सोरा शुद्ध हो जाता है और अतिरिक्त अनुष्ठानों के बाद वह एक बार फिर यहोवा के लिए स्वीकार्य हो जाता है, यानी व्यक्ति को फिर से पवित्र किया जाता है, फिर से पवित्र किया जाता है। लेकिन अध्याय 14 में एक अन्य प्रकार के तजारात के बारे में भी बताया गया है, घर पर तजारात। इसलिए अपने अध्ययन को थोड़ा और सुसंगत बनाने के लिए हम लैव्य व्यवस्था 14 को दो भागों में विभाजित करने जा रहे हैं, पद 1 से 32, जो मेत्सोरा के शुद्धिकरण अनुष्ठानों से संबंधित है। यानी एक व्यक्ति जो तजारात के संक्रमण से अशुद्ध हो जाता है, और फिर पद 33 से 53 जो हमें लैव्य व्यवस्था में चर्चित अंतिम प्रकार के तजारात से परिचित कराते हैं जो एक घर को संक्रमित कर सकता है। जब हम उस भाग में पहुंचते हैं तो ध्यान दें कि घर पर तजारात का मामला केवल तभी प्रभावी होता है जब इसराइल वादा किए गए देश कनान में प्रवेश करता है, और यह कम से कम आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि विचाराधीन घर पत्थर और या मिट्टी की ईंटों से बना होना चाहिए। इस नियम का उन तंबुओं से कोई लेना देना नहीं था जिनमें ये भटकते हुए इसराइली वर्तमान में रह रहे थे। लैव्य व्यवस्था 14 का 1 से 32 पढ़ें। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि मेत्सोरा को उसकी अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान प्रक्रियाएं लैव्य व्यवस्था के सभी अनुष्ठानों में सबसे अधिक मांग वाले और जटिल अनुष्ठानों में से हैं। हालांकि जो बात इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती है वह यह है कि वे उन अनुष्ठानों से काफी मिलते जुलते हैं जिनका हमने अध्याय 8 में अध्ययन किया था, अनुष्ठान जो एक पुजारी को पुजारी के रूप में पवित्र करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। शायद इन विभिन्न निर्धारित लैव व्यवस्था अनुष्ठानों में इससे अधिक गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र सेवकों के बीच अपना स्थान लेने वाला है, याजक, लेकिन दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति का अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध हो जाना और फिर से शुद्ध होने के लिए चुकाई जाने वाली उच्च कीमत का मुद्दा था। आइए इन संस्कारों पर बारीकी से नजर डालें क्योंकि वे एक छाया और प्रकार हैं, वास्तव में एक सटीक पैटर्न जिसे यीशु 13 शताब्दियों बाद पूरा करेंगे। अध्याय 14 की पहली 3 आयतों में हमारे अध्ययन के लिए मंच तैयार है। मेत्सोरा, जो शिविर के बाहर अपने परिवार से दूर, अपने समाज और ईश्वर से अलग रह रहा है, उसे लगता है कि अब वह ठीक है, लेकिन वह खुद के लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। एक पुजारी को बुलाकर उसकी जांच करनी चाहिए और इस पुजारी को पीड़ित को देखने के लिए शिविर के बाहर जाना चाहिए। यदि पुजारी यह निर्धारित करता है
कि तजारात चला गया है तो मेदसोरा को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान प्रक्रिया शुरू होती है। यहां कुछ टिप्पणियां हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि पुजारी ने कभी भी इस व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि पुजारी ने मेदसोरा पर प्रार्थना भी की थी या किसी भी तरह की सांत्वना दी थी। क्यों? क्योंकि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, जैसे कि सर्दी का वायरस या फ्लू या खसरा, ऐसी चीजें जिनसे इजरायली आम तौर पर पीड़ित थे, जैसे कि हम सभी पीड़ित हैं।
यह एक आध्यात्मिक बीमारी थी और इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि यहोवा मेदसोरा को उसके कष्ट से मुक्त कर दे। पुजारी से यह निर्धारित करने के लिए नहीं कहा गया था कि व्यक्ति ने ईश्वर के विरुद्ध क्या अपराध किया था जिससे उसे तजारात हो गया। उससे केवल यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि क्या व्यक्ति को वास्तव में तजारात था और बाद में क्या व्यक्ति को यह बीमारी नहीं थी।
अतः तजारात द्वारा व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करने के बाद पुजारी केवल यही कर सकता था कि वह उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे यदि ऐसा मामला था। दूसरा ध्यान दें कि मेदसोरा के निरीक्षण के अलावा शुद्धिकरण की पहली रस्म शिविर के बाहर होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति की त्वचा की स्थिति ठीक हो जाती है, उसे स्वतः ही शुद्ध नहीं माना जाता। वह बस शुद्ध होने के योग्य है। इसीलिए पुजारी को पहले उस स्थान पर जाना पड़ता था जहां मेदसोरा रहता था। उसे अपनी जांच करने के लिए अशुद्ध स्थान पर जाना पड़ता था और अशुद्ध व्यक्ति को फिर से शुद्ध करने के उद्देश्य से पहली प्रक्रियाएं करनी पड़ती थीं।
यह लाल बचिया की बल से भिन्न नहीं है जिसे भी शिविर के बाहर किया जाना था। इसलिए यह शिविर के बाहर था कि लाल बचिया अनुष्ठान उच्च पुजारी द्वारा किया गया था, एक अनुष्ठान जिसके परिणाम स्वरूप लाल बचिया की राख और पानी का मिश्रण होता था जिसे तब उन लोगों पर छिड़का जाता था जिन्हें मृत शरीर को छूने से शुद्धिकरण की आवश्यकता होती थी। वास्तव में लाल बचिया अनुष्ठान और 4-7 में वर्णित अनुष्ठानों के बीच और भी अधिक समानताएं हैं जो किसी को तजारात से शुद्ध करने के लिए हैं।
मेदसोरा को शुद्ध करने की यह रस्म पुजारी के पास दो पक्षियों को लाने से शुरू होती है, बेशक दो स्वच्छ किस्म के पक्षी। पक्षियों के साथ देवदार की लकड़ी, कीड़े से निकला लाल रंग और हिसोप की एक शाखा लानी होती है। कीड़े से निकला लाल रंग एक रंग को दर्शाता है। बाइबल के समय में एक खास किस्म के कीड़े के अंडों से बना लाल रंग जो पैरों पर रहता था। हिसोप की एक शाखा का इस्तेमाल हमेशा सभी तरह के इजरायली शुद्धिकरण समारोहों में किया जाता था। लेव्य व्यवस्था और पवित्र शास्त्र में अन्यत्र भी इसका वर्णन किया गया है। जब हम लाल बचिया की बलि के बारे में बाद के अध्ययनों में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल वही चीजें शामिल थीं, देवदार की लकड़ी, लाल रंग और हिसोप। मेदसोरा को शुद्ध करने की प्रक्रिया यह है कि पक्षियों में से एक को मार दिया जाता है और उसका खून मिट्टी के कटोरे में बहा दिया जाता है। कटोरे में पानी होना चाहिए। इसके बाद देवदार की लकड़ी, हिसोप और लाल रंग के साथ बचे हुए जीवित पक्षी को कटोरे में खून और पानी के मिश्रण में डुबोया जाता है। फिर उपस्थित पुजारी मेदसोरा पर खून और पानी को 7 छिड़कता है। उसके बाद जीवित पक्षी को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आइए इस अनुष्ठान के कुछ पहलुओं पर नजर डालें। सबसे पहले, स्वच्छ पक्षियों को ऐसे प्रकार का होना चाहिए जो घरेलू उपयोग के लिए न हो, और इसलिए जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वे वापस नहीं आते। इसलिए उन्होंने कबूतरों या कबूतरों का उपयोग नहीं किया जिनमें वापस आने की प्रवृत्ति होती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पक्षी गौरैया होते थे। दूसरा, मूल इब्रानी में एक दिलचस्प शब्द का उपयोग उस पानी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मिट्टी के कटोरे में रखा जाना है, जिसमें गौरैया का खून बहाया जाना है। यह माइम छयम है और आप ये सुनकर थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपने इसे पहले भी सुना है। इसका मतलब है जीवित जल। हाँ, जीवित जल। शर्त लगाइए कि आपने सोचा होगा कि यीशु के लिए जीवित जल का संदर्भ नए नियम का विचार था। वास्तव में जीवित जल, जिसका अर्थ है कुएं या तालाब से नहीं बल्कि बहते झरने या बहती नदी से लिया गया पानी। जीवित जल कई लैव्य व्यवस्था बलिदानों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के लिए एक आवश्यकता है, विशेष रूप से अशुद्धता से शुद्धिकरण से जुड़े बलिदानों में। इसलिए जब यीशु ने खुद को जीवित जल का स्रोत बताया तो यह बात उसके समय के यहूदियों को तुरंत समझ में आ गई। नदियां सूख गईं, समय समय पर आर्टेसियन झरने बहना बंद हो जाते थे, और जब ऐसा हुआ तो शुद्धिकरण संस्कारों के लिए आवश्यक जीवित जल के लिए एक नया स्रोत खोजना आवश्यक था। यीशु कह रहे थे कि वे शुद्धिकरण के लिए वास्तविक स्रोत थे और यह कभी नहीं सूखता हो स्रोत असीमित था। तो यहां हमारे पास एक और नया विचार है जो वास्तव में तोरह में शुरू होता है। तीसरा, लाल रंग जिसे कटोरे में डुबोया गया था वास्तव में ऊन की एक पट्टी के रूप में था जिसे लाल रंग से रंगा गया था।
अंत में भले ही एक जानवर, इस मामले में एक पक्षी, इस शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए मारा जाता है, इसे तकनीकी रूप से बलि नहीं माना जाता है, अर्थात यह हमारे द्वारा अध्ययन किए गए नामित बलि अनुष्ठानों में से किसी एक की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह केवल एक मामला है कि पक्षी की गर्दन काटकर उसे मारा जाता है क्योंकि उसके रक्त की आवश्यकता होती है। पक्षी की बलि देने के लिए यह आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। जब किसी पक्षी को बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नाजुक मस्तिष्क के तने को अलग करने के लिए एक नाखून का उपयोग करके उसकी गर्दन को सटीक तरीके से दबाया जाता है। साथ ही सभी बलि अनुष्ठान तंबू या मंदिर में होने चाहिए, और इस पक्षी की हत्या उन पवित्र भूमि से बहुत दूर की गई थी। अब इससे पहले कि कोई यह बताए कि लाल बछिया की बलि एक सच्ची बलि भी शिविर के बाहर की गई थी, ये तंबू से झुरी हुई थी, क्योंकि लाल बछिया को मारने वाला उच्च पुजारी मंदिर में मौजूद अन्य पुजारियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। पक्षी को मारने वाला पुजारी अकेले काम कर रहा था। मैं इस बात की ओर इशारा करता हूं क्योंकि पिछले पाठों में मैंने बताया था कि तोरह में अशुद्ध से पवित्र बनने के लिए आवश्यक कदम थे। पहले व्यक्ति को अशुद्ध से स्वच्छ बनना पड़ता था और फिर वह स्वच्छ से पवित्र बनने के योग्य होता था। सख्ती से कहें तो कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उस एकमात्र साधन में भी भाग नहीं ले सकता था जो किसी व्यक्ति को पवित्र बना सकता था, जो रक्त से झुरी एक अनुष्ठानिक बलि थी। केवल स्वच्छ लोग ही रक्त बलिदान चढ़ा सकते थे। यह जीवित जल था जो अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्राथमिक माध्यम था। दूसरी ओर यह रक्त था जो स्वच्छ को पवित्र बनाने के लिए आवश्यक था। इसलिए प्रक्रियाओं का एक सेट, जिसे रक्त बलिदान नहीं माना जाता था, पहले अशुद्ध व्यक्ति को उस अपवित्र अवस्था से बाहर निकालने और तटस्थ भूमि पर वापस लाने के लिए किया जाना था। ठीक है, वापस शुद्ध होने के लिए, और इसमें पानी शामिल था। अब मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण दिखाता हूं कि कैसे हमें बाइबल का अध्ययन करते समय हमेशा इस बात के उत्तर के लिए पैटर्न की खोज करनी चाहिए कि क्यों कुछ चीजें वैसी हैं जैसी वे हैं। क्योंकि तोरह का पैटर्न यह है कि जल शोधन अशुद्ध व्यक्ति को स्वच्छ बनाता है और बलि का खून स्वच्छ व्यक्ति को पवित्र बनाता है। और क्योंकि यीशु मसीह को वह कहा जाता है जिसने बलिदान प्रणाली की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, क्या हम वास्तव में दोनों के बीच एक ठोस संबंध बना सकते हैं, यानी कुछ ऐसा जो केवल रूपक न हो। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने की तरह ही आज भी अशुद्ध लोगों को पवित्र बनने से पहले शुद्ध होना चाहिए। हालांकि यह प्रक्रिया तात्कालिक और अदृश्य है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि क्या हुआ है। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में अशुद्ध से शुद्ध हो जाते हैं और फिर शुद्ध से पवित्र। इसलिए लैव्य व्यवस्था में हमने जो आध्यात्मिक सिद्धांत सीखा है वह यीशु मसीह के आगमन के बाद भी सच है। नए नियम के एक अंश को सुने जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन अब जब आप तोरह का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा अलग होना चाहिए। यूहन्ना 19:34, लेकिन सैनिकों में से एक ने भाले से उसका बाजू छेद दिया और तुरंत खून और पानी निकला। 35, और जिसने देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि मैं सच कहता हूं, इसलिए कि तुम भी विश्वास करो।
क्या उससे खून और पानी निकला? हाँ, और यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि इस घटना का इतिहासकार यह स्वीकार करता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी था और वह जो कह रहा है वह सच है, भले ही वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। यीशु के शरीर से निकले पानी का क्या महत्व है? आप देखिए, भाले के घाव से यीशु के शरीर से निकले पानी ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे पहले किसी ने देखा था। ये किसी भी तरह से क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा नहीं था। यही कारण है कि लेखक ने यह बताने के लिए बहुत विस्तार से लिखा कि यह वास्तव में हुआ था। पानी का बहुत बड़ा अर्थ था, क्योंकि यीशु ने घोषणा की थी कि वह जीवित जल का स्रोत था, वह विशिष्ट प्रकार का पानी जिसे तोरह अशुद्धता से शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में बताता है। यीशु और पानी और शुद्धिकरण के बारे में यह बात जकरियाह द्वारा भविष्यवाणी की गई और समझाई गई थी। आने वाले मसीहा के बारे में महान बाइबल की भविष्यवाणियों में से एक से इस पद को सुने, जकरियाह 13:1, उस दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और अशुद्धता के लिए एक सोता खोला जाएगा। कुछ पद बाद यह मसीहा को छेदा जाने की बात करता है। यह अंश यीशुआ के आने की बात कर रहा है। अब एक फव्वारा परिभाषा के अनुसार जीवित जल उत्पन्न करता है। एक फव्वारा बहते पानी का स्रोत है। उदाहरण के लिए, एक कुआं जो केवल उस पानी को रखता है जो हिलता नहीं है। अशुद्धता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फव्वारे के पानी का मतलब बस मानक शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से है। इससे भी अधिक, जहां हमारी बाइबल उस आयत में कहती है पाप और अशुद्धता के लिए, मूल इब्रानी में हत्तात और निद्दा के लिए कहा गया है। अब जब आपने लैव्य व्यवस्था का अध्ययन कर लिया है तो आप जानते हैं कि हत्तात का अर्थ पाप बलि नहीं है। हत्तात शुद्धिकरण बलिदान का नाम है और निद्दा इब्रानी में अस्वच्छता की आध्यात्मिक स्थिति के लिए है, जो आमतौर पर मासिक धर्म के दौरान या उसके बाद एक महिला के बच्चे का जन्म से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब अनुष्ठान अशुद्धता की एक सामान्य स्थिति भी है। तो यह अंश वास्तव में यह बताता है कि यीशु शुद्धिकरण की भेंट के लिए और उन लोगों के लिए जीवित जल का फव्वारा है जो अशुद्धता की स्थिति में है। याद रखें, अशुद्धता पाप के कारण हो सकती है, या यह केवल ईश्वर द्वारा घोषित एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पाप शामिल नहीं है, बच्चे को जन्म देने के बाद मां। यदि हम मूसा को पढ़ने की कोशिश करें जैसा कि यीशु ने कहा था और पुराने नियम को गंभीरता से लें, तो हम जान जाएंगे कि यीशु को मानव जाति को पवित्र बनाने के लिए रक्त और पानी दोनों प्रदान करने होंगे, अशुद्ध लोगों को लेने और उन्हें शुद्ध करने के लिए पानी, और फिर अब शुद्ध लोगों को पवित्र बनाने के लिए प्रायश्चित बलिदान के रूप में रक्त। ये केवल ईश्वर द्वारा नियुक्त लैव्य व्यवस्था के पैटर्न और मॉडल का पालन करना था, और निश्चित रूप से पृथ्वी पर उनके और उनके मंत्रालय के बारे में भविष्यवाणियों का पालन करना था। पद 7 में पुजारी मेतसोरा पर 7 बार पानी और पक्षी रक्त का मिश्रण छिड़ करने के बाद मेतसोरा को शुद्ध घोषित करता है। इसके बाद दूसरे पक्षी को ऊरने के लिए हवा में छोड़ दिया जाता है। हालांकि हमने अभी तक बलि का बकरा अनुष्ठान का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जानवरों की एक जोड़ी लेने और एक को मारने तथा दूसरे को छोड़ने का ये विचार बलि के बकरे के लिए वैसा ही है जैसा कि मेतसोरा के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए है। अवधारणा यह है कि जीवित जानवर, इस मामले में पक्षी, व्यक्ति के पापों को वहन करता है और उसे उस व्यक्ति से दूर भेज दिया जाता है, या बलि के बकरे के मामले में पूरे राष्ट्र के पापों को उस बकरे पर डाल दिया जाता है और उसे दूर भेज दिया जाता है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तजारात करने वाले व्यक्ति को शुद्धता की स्थिति में वापस लाने पर दिए जाने वाले अत्यधिक महत्व को कम करके आंकना मुश्किल है। अनुष्ठान में 2 बलिदानों के समान तत्व शामिल है जिन पर केवल उच्च पुजारी ही अध्यक्षता कर सकता है, लाल बछिया बलिदान और बलि का बकरा अनुष्ठान। साथ ही, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मेतसोरा को शुद्ध करने का अनुष्ठान पुजारी को पुजारी के रूप में पवित्र किए जाने के समान है। पक्षी को छोड़े जाने के बाद मेदसौरा को अब अपने कपड़े धोने होंगे, सिर मुंडाना होगा और स्नान भी करना होगा। एक बार जब इजरायली कनान में बस गए तो अनुष्ठान स्नान का स्थान मिकवा बन गया, एक प्रकार का पत्थर का स्विमिंग पूल। जैसा कि हमने चर्चा की है कि स्वच्छ और अशुद्ध की अवधारणा जटिल है और यह एक व्यक्ति का पूरी तरह से स्वच्छ या पूरी तरह से अशुद्ध होना कोई साधारण मामला नहीं है। आप देखेंगे कि अनुष्ठान प्रक्रिया के एक निश्चित भाग के बाद कई बार हम अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र कहेगा कि व्यक्ति अब शुद्ध है। यह पद 7 के बाद कहता है, फिर पद 8 के बाद, फिर पद 9 के बाद, और यह अध्याय 14 में कई बार कहता है, जो थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। यहां नई मां के साथ हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह है मेटमेदसौरा, शुद्धता के अधिक से अधिक स्तर प्राप्त करना। पद 7 में वह जीवित पक्षी को छोड़ने पर पहले चरण, सबसे कम शुद्धता के चरण पर पहुंचता है। पद 8 में दाढ़ी बनाने और स्नान करने के बाद वह शुद्धता के अगले चरण में चला जाता है। शुद्धता के इस दूसरे चरण में उसे अंततः इसराइल के शिविर में वापस जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह अगले 7 दिनों तक अपने घर या तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता है। पद 9 में शुद्धता का तीसरा चरण तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने सारे बाल फिर से मुंडवा लेता है, जिसमें उसकी दाढ़ी और भौहें भी शामिल हैं। उस समय वह कितना अजीब दिख रहा होगा, और फिर से अपने आप को तथा अपने कपड़ों को पानी से धोता है। अंत में वह पर्याप्त रूप से शुद्ध हो जाता है। वह धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए पर्याप्त धार्मिक शुद्धता की स्थिति में पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि वह मंदिर में जा सकता है। हम जो देखते हैं एक अर्थ में वह व्यक्ति का धीरे धीरे पुनः समाजीकरण है, यानी कदम दर कदम यह व्यक्ति सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने से वापस इजरायली समाज का सदस्य बन जाता है, और उसी तरह कदम दर कदम इस व्यक्ति को यहोवा द्वारा त्यागे जाने के बाद वापस उसके अनुग्रह और उसकी पवित्र उपस्थिति में लाया जाता है। पुनर्स्थापना के भौतिक और आध्यात्मिक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। शुद्ध होने की दिशा में पहला कदम उठाने के 8वें दिन फिर पवित्र मेदसौरा के लिए बलिदान की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां हमारे पास एक और कड़ी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पुरुष खतना भी 8वें दिन हुआ। देखिए, परमेश्वर की नजर में और इब्रानी सोच में एक अशुद्ध व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मृत है। किसी व्यक्ति को उसकी अशुद्धता से शुद्ध करने में वास्तव में मृतकों में से पुनरुत्थान के कई पहलू शामिल हैं। हम बाद में इस पर विचार करेंगे। वस्तुतः शुद्धिकरण प्रक्रिया आध्यात्मिक रूप से मृत व्यक्ति में नया जीवन फूंकती है। तो इसका खतने से क्या लेना देना है? जब तक नर शिशु का खतना नहीं हो जाता तब तक वह इसराइल का आधिकारिक सदस्य नहीं होता। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए खतना होने तक वह नर शिशु इज़राइल के शिविर से बाहर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब्राहमिक वाचा, जिससे इब्रानी लोग आए और इब्रानी लोगों को एक भीड़ बनाने और उन्हें एक विशेष भूमि देने का परमेश्वर का वादा वाचा में शामिल होने के संकेत के रूप में पुरुष खतना की आवश्यकता थी, इसे मोजेक वाचा के साथ फिर से पुष्टि की गई और यह गैर परक्राम्य था। शिशु लड़के को जीवन दिए जाने के 8वें दिन यानी बच्चे का जन्म हुआ, उसे खतना समारोह के दौरान इसराइल के शिविर में स्वीकार किया गया। मेदसौरा को नया जीवन दिए जाने के 8वें दिन या इससे भी बेहतर मेदसौरा को जीवन वापस लौटाए जाने के बाद उसे इसराइल के शिविर में वापस स्वीकार किया गया। शिविर के बाहर मृत्यु है, शिविर के अंदर जीवन है। परमेश्वर के साथ संबंध के बाहर मृत्यु है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में ही जीवन है। क्या आप इस पैटर्न और कनेक्शन को देखते हैं?
फिर से जन्म की इंजील अवधारणा की उत्पत्ति नया नियम में नहीं हुई थी, क्योंकि मेदसौरा को सचमुच फिर से जन्म माना जाता था जब उसे शुद्ध किया गया और इजरायली समाज में फिर से पेश किया गया और यहोवा के साथ उसका रिश्ता फिर से स्थापित हुआ। इसलिए नया नियम फिर से जन्म की अवधारणा बस एक पुराना नियम पैटर्न है जिसे यीशुआ द्वारा आगे लाया गया और अधिक अर्थ दिया गया। वास्तव में न केवल फिर से जन्म की उत्पत्ति पुराना नियम में हुई, न कि नया नियम में, बल्कि हृदय के खतने के विचार की भी उत्पत्ति हुई। और हृदय का खतना एक वाक्यांश जिसका प्रयोग पौलुस ने किया। सबसे पहले मूसा द्वारा व्यवस्था विवरण 10 का 16 में कहा गया था और इसका उद्देश्य ठीक वही बात बताना था जो पौलुस बता रहा था कि सच्चा खतना इसराइल के शिविर में प्रवेश और इस तरह इसराइल के परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश एक भौतिक मामले से कहीं अधिक आध्यात्मिक मामला था। जब हम व्यवस्था विवरण में पहुंचेंगे तो हम इस पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे।
पद 10 में उन दो मेमनों, साथ ही एक साल के मेमने, तेल में मिला हुआ कुछ अनाज, साथ ही कुछ अतिरिक्त तेल के साथ एक कुप्पी तेल का मतलब निश्चित रूप से जैतून का तेल है। तेल का वर्णन करने वाले इब्रानी में कहा गया है कि यह तेल का एक लॉग होना चाहिए। यह पात्र के प्रकार का संदर्भ नहीं है, यह तरल का माप है। तेल का एक लॉग लगभग एक पिंट होता है। निम्नलिखित पद में हम देखते हैं कि मेदसौरा के लिए कई प्रकार के बलिदान किए जाने हैं। ओलाह, मिंचाह, हत्तात और आशम यानी होम बलि, अनाज या भोजन की भेंट, शुद्धिकरण की भेंट और क्षतिपूर्ति की भेंट। एकमात्र विशिष्ट बलिदान जो एक गैर पुजारी के लिए उपलब्ध है, जो इस मेदसौरा के लिए निर्धारित नहीं है, वह शांति की भेंट जेवा है। फिर से यह उस अत्यधिक गंभीर प्रकृति और कीमत को इंगित करता है जिसे तजारात से अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धता में लौटने के लिए चुकाना पड़ता था। पुजारी को शुद्धिकरण और पुनः पवित्रीकरण किए जाने वाले व्यक्ति के साथ वाइल्डनेस तंबू, बाद में मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाना था। वास्तव में आंगन के अंदर नहीं, बल्कि आंगन के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यह थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है कि पवित्र स्थान के आसपास वास्तव में कोई चीज कहां घटित होने वाला था, क्योंकि आम तौर पर पूरे तंबू क्षेत्र, आंगन और पवित्र स्थान तंबू को शास्त्रों में बस बैठक के तंबू के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए हमारे वर्तमान मामले में जहां अधिकांश बाइबलें कहती हैं कि व्यक्ति को बैठक के तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा होना था, इसका मतलब वास्तव में पवित्र स्थान तंबू के द्वार पर खड़ा होना नहीं है, बल्कि पूरे परिसर में प्रवेश द्वार पर खड़ा होना है, या बाद के समय में जब तंबू को बदलने के लिए एक स्थायी संरचना बनाई गई थी, मंदिर मेदसौरा को अजारा नामक प्रवेश द्वार पर ले जाया जाता है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार पर था, जहां पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान स्थित थे। मेदसौरा का मुख पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान की ओर होगा और पुजारी कोरबानोस यानी मेदसौरा द्वारा लाए गए कई बलिदानों के साथ आगे बढ़ेगा। मेदसौरा को आंगन या अजराह के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पुजारी द्वारा कई बलिदान अनुष्ठानों से गुजरने तक प्रतीक्षा करनी होती थी। सबसे पहले पुजारी ने अशम या क्षतिपूर्ति की भेंट चढ़ाई और उसे ऐसा इस तरह से करना था जिसे आम तौर पर लहर भेंट कहा जाता है। इब्रानी में इस लहर भेंट को तेनुफा कहा जाता है और पुजारी मेमने और तेल की लकड़ी को कंधे पर उठाकर एक साथ रखता है और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ऊपर नीचे घुमाता है। संक्षेप में, क्षतिपूर्ति के लिए आशम भेंट का विचार शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए असामान्य है, क्योंकि आशम का मतलब आम तौर पर पवित्र संपत्ति के खिलाफ अपराध के लिए या झूठी शपथ लेने के लिए या किसी तीसरे पक्ष को चोट पहुंचाने के लिए प्रायश्चित करना होता है, या जैसा कि मैंने कई मौकों पर बताया है कि संदिग्ध अपराध के लिए छराए जाने वाले बलिदानों में से एक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दोषी महसूस कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि उसने क्या पाप किया है, और स्थिति के आधार पर यह व्यक्ति अशम और कभी कभी जेवा बलिदान चढ़ाएगा बस मामले में, ताकि परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सके। चूंकि तजारात को आध्यात्मिक बीमारी माना जाता है और इसलिए यहोवा की ओर से एक सा, हम आसानी से समझ सकते हैं कि मेदसौरा ने आशम बलिदान क्यों चढ़ाया, क्योंकि उसने जरूर ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया होगा, अन्यथा उसे पहले स्थान पर तजारात नहीं होता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें गलत फहमी न हो, जबकि आशम और जेवा स्वैच्छिक बलिदान हो सकते हैं जो स्थिति पर निर्भर करता है, यहां आशम की आवश्यकता है, इसलिए यहोवा निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता को समझता है। आखिरकार मेदसौरा ने क्या अपराध किया था? अधिकांश प्राचीन यहूदी संत इस बात पर सहमत हैं कि सबसे संभावित पाप लाशोन हारा था। किसी के विरुद्ध निंदा या बुरी बातें करना, जिसे हम चरित्र हनन कह सकते हैं, हत्या के समान एक बहुत ही गंभीर पाप। हालांकि लैव्य व्यवस्था में हमें ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन मिशना हमें बताता है कि प्रक्रिया यह थी कि आशम मेमने को फिर से मेत्सोरा के पास लाया जाता था और मेत्सोरा ने अभी भी जीवित मेमने के सिर पर हाथ रखे याद रखें। इब्रानी में इसे सेमिचा कहा जाता है। याद रखें कि बलि के जानवर पर हाथ रखने से दो बातें होती हैं। एक, कि उपासक इस विशेष जानवर की पहचान कर रहा है जिसे वह बलि चढ़ा रहा है, और अब वह जानवर का स्वामित्व यहोवा को हस्तांतरित कर रहा है, यानी उस पल जानवर पवित्र या पवित्र संपत्ति बन जाता है। और दो, उपासक का अपराध उपासक से जानवर पर स्थानांतरित हो जाता है। इसके बाद मेमने को वेदी क्षेत्र में वापस ले जाया जाता है, विशेष रूप से वेदी के उत्तरी भाग में। लैव्य व्यवस्था 1:11, 6:18 और 7:2 में इसका उल्लेख किया गया है, और वहां बलि दी जाती है। कुछ रक्त वेदी पर छिड़का जाता है और कुछ को मेत्सोरा दाहिने कान के लोभ, दाहिने अंगूठे और दाहिने बरे पैर के अंगूठे पर तेल छिड़का जाता था। उसके बाद लाए गए तेल की कुप्पी से जैतून के तेल को पवित्रतम स्थान की दिशा में छिड़का जाता था। फिर बचे हुए तेल से पुजारी को मेत्सोरा पर ठीक उन्हीं जगहों पर तेल छिड़कना था जहां उसने अभी अभी मेमने के खून को छिड़का था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह वही प्रक्रिया है जिसे हमने अध्याय 8 में देखा था, जिसका उपयोग पुजारियों को पुजारी के रूप में पवित्र करने के लिए किया जाता है। कान, अंगूठे और पैर के अंगूठे पर खून और तेल छिड़कने का विचार यह था कि सफाई और अभिषेक सिर से पैर तक था, पूरा व्यक्ति अब शुद्ध था। मेत्सोरा, जो अभी भी तंबू प्रांगण या मंदिर अजराह के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, अब उसके सिर के मुकुट पर तेल लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि सिर पर तेल लगाने का उद्देश्य, जिसे मेत्सोरा पर रखे गए मेमने के खून पर लगाया जा रहा था, यह है कि तेल खून को ढकने और उसकी रक्षा करने के लिए है, ताकि वह अपना प्रायश्चित कार्य कर सके। उसके बाद हत्तात की बलि के लिए, मादा मेमने और ओलाह की बलि के लिए नर मेमने का वध किया गया और उनके साथ मिंचाह की बलि दी गई, जबकि पहली बलि आशम पूरी तरह से पुजारी द्वारा चढ़ाई गई थी, क्योंकि मेत्सोरा अभी तक बलि अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं था। मेत्सोरा को अब आंगन के द्वार से आगे जाने की अनुमति दी गई थी और वह हत्तात, ओलाह और मिंचाह बलि में अपनी सही भूमिका निभा सकता था। एक महत्वपूर्ण कदम। फिर से ध्यान दें कि शुद्धता के वे चरण या स्तर हैं जिन्हें प्राप्त करना था। अशुद्ध और शिविर के बाहर से शुरू करके मेत्सोरा को शिविर के अंदर पैर रखने से पहले शुद्धता के दूसरे स्तर तक का समय लगा। तीसरे स्तर से पहले उसे स्वच्छ माना जाता था और मंदिर के बलिदानों के लिए उपस्थित होने के योग्य माना जाता था, और फिर भी एक उच्च स्तर से पहले वह तंबू या मंदिर के द्वार से आगे निकल सकता था और वास्तव में सामान्य रूप से अनुष्ठान बलिदानों में भाग ले सकता था। पद 21 से 32 तक से हम देखते हैं कि यदि मेत्सोरा गरीब है और वह इसे वहन नहीं कर सकता है, तो कुछ मेमनों के बदले पक्षियों को रखा जा सकता है। संभवतः ऐसा अक्सर होता था, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक शिविर से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। वह काम करने या अपने झुंडों की देखभाल करने में असमर्थ होता था आदि। फिर भी वह किसी भी परिस्थिति में प्रारंभिक भेंट, आशम, क्षतिपूर्ति भेंट के लिए मेमने की आवश्यकता से बच नहीं सकता। हम इन पदों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेमनों के बदले पक्षियों के प्रतिस्थापन के अलावा अनुष्ठान वही है जो हमने अभी कवर किया है। इसके बाद वह व्यक्ति अब मेत्सोरा नहीं रह जाता, इसलिए वह पूरी तरह से इजरायली समाज के साथ फिर से जुड़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहोवा के साथ उसका रिश्ता फिर से स्थापित हो गया है। वह परमेश्वर के साथ शांति में है, एक बार फिर पवित्र। क्या आप उस व्यक्ति की राहत की कल्पना कर सकते हैं? यह कैसी परीक्षा है? एक छोटी सी टिप्पणी और हम आगे बढ़ेंगे। धार्मिक यहूदी अक्सर ईसाई धर्म को सस्ता धर्म कहते हैं, मैं सभी कारणों उनमें से कुछ अनुचित और बिल्कुल झूठे मैं गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद आप इसे खुद ही देखना शुरू कर रहे हैं। यहूदी इस विचार का मजाक उड़ाते हैं कि हम मसीह को प्राप्त करने के लिए कुछ शब्द प्रार्थना करते हैं और एक पल में हम शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं, शिविर के अंदर लाए जाते हैं और वाचाओं में शामिल हो जाते हैं और हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, बट्टा बिंग बट्टा बूम, अशुद्ध से बचाए जाने तक। कीमत? कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम कुछ भी नहीं छोड़ते, कम से कम सतही तौर पर, लेकिन हमारे पाप और उसका भयानक भाग्य। देखें कि एक इब्रानी को यहोवा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए साल दर साल कितनी कीमत चुकानी पड़ी। देखें कि इसकी कीमत कितनी है। समय और पैसे की अशुद्ध से शुद्ध पवित्र बनने की ये सभी बलिदान जिनका हमने अध्ययन किया है बहुत महंगे हैं, कई नियमित रूप से दोहराए गए। वास्तव में इन आवश्यक बलि संस्कारों में भाग लेने के लिए अक्सर एक इब्रानी को लगभग हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता या तो खत्म हो जाता या खराब हो जाता। लेकिन आम तौर पर वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे परमेश्वर के साथ शांति को अपने जीवन में एक प्राथमिकता मानते थे। यहोवा के साथ उस शांति के बिना उनके जीवन में क्या आशा थी? इसलिए यहूदी दृष्टिकोण से यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों बहुत से लोग हमारे ईसाई धर्म को सस्ता मानते हैं, जिसका मतलब है बिना किसी कीमत के। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, जो ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके प्राप्त करता है वे सही हैं। हमारी कीमत लगभग शून्य है, लेकिन ईश्वर और उनके पुत्र यीशु ने सब कुछ दिया, एक ऐसी कीमत जो पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज्यादा है। कभी कभी ईसाई इस बात पर गर्व करते हैं और यहूदियों पर स्वर्ग जाने के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कल्पना से परे नम्रता से चलना चाहिए। हमें अब थोड़ा और समझदार होना चाहिए कि एक यहूदी ईसाई धर्म को एक सस्ता धर्म क्यों मानता है। और आशा है कि लैव्य व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद अब हम उनके साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि अब हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। आइए अब लैव्य व्यवस्था 14 के दूसरे भाग पर आगे बढ़ें, जो आयत 33 से 53 में निहित है। ये घरों पर तजारत के मामले से संबंधित है। यह खंड दिलचस्प है, यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो इसीलिए कि यह उस भविष्य के समय की आशा करता है जब लगभग 30 लाख इब्रियों की यह भीड़ रेगिस्तान के जंगल में तंबुओं में रह रही है और अपने लिए एक निश्चित भूमि पर रहेगी शहरों में, पत्थर से बने और मिट्टी से लिपे हुए स्थायी आवासों के साथ। आइए इस पाठ को समाप्त करने के लिए कुछ मिनट रुकें और कुछ परिप्रेक्ष्य पुनः प्राप्त करें। याद रखें कि यहां लैव्य व्यवस्था में हम मिस्र से पलायन के एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय बाद हैं। अब तक हमने जो भी अध्ययन किया है उसके बाद यह भूलना आसान है कि पहले फसह को मुश्किल से एक वर्ष ही बीता है। वह भयानक और भयावह रात जब परमेश्वर ने मिस्र के ज्येष्ठ पुत्रों पर मृत्यु लाई ताकि उसके लोग याकूब के वंशज मुक्त हो जाएं। ये सब लोगों के दिमाग में काफी ताजा रहा होगा। मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूं कि परमेश्वर ने उनसे जो भविष्य का वादा किया था उसकी संभावना इस समय कितनी वास्तविक थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने के बीच एक ऐसा समय जो जल्द ही उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़ जाएगा। क्या वे विश्वास कर सकते थे कि आखिरकार उनके पास अपनी जमीन होगी, कि वे आखिरकार दूध और शहद से भरी जगह पर रहेंगे, कि वे आखिरकार अपने अस्थाई तंबुओं को हटा देंगे और एक बार फिर से सड़कों, पानी के कुओं, खेती के खेतों और घरों के साथ शहरों में आराम से रहेंगे? वास्तव में लैव्य व्यवस्था में सब कुछ जैसा कि तोरह में है भविष्य के समय के लिए तैयारी है, भले ही यह वर्तमान के लिए भी था, आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। भले ही यीशु हामाशियाच ने तोरह के बहुत से अंशों को फलित किया है, फिर भी बहुत कुछ अभी भी अर्थ और वास्तविकता के उच्च स्तर पर ले जाना बाकी है। यीशु सहित भविष्यद्वक्ता हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। एक ऐसा समय जो अभी भी हमारे लिए भविष्य है, जिसमें बहुत सी चीजें अभी भी होनी बाकी हैं, कुछ अद्भुत और कुछ बहुत ही भयावह अनुपात से परे। क्या हमारे पास यह विश्वास करने का विश्वास है कि ये चीजें वास्तव में होंगी? क्या हम इन चीजों के बीच में वफादार रहेंगे और उन्हें पहचानेंगे कि वे क्या हैं? परमेश्वर का निर्णय हमारे लिए इस विद्रोही और हठीले राष्ट्र इज़राइल को पीछे मुड़कर देखना और उनके निरंतर भरभराने, ठोकर खाने और असंतोष में दोष ढूंढना बहुत आसान है। यह सोचना कि हे परमेश्वर, यहोवा को अपना न्याय साबित करने के लिए और क्या करना होगा? क्या वह उन्हें शक्ति, प्रेम और विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है? उसने उन्हें मुक्त करने के लिए व्यावहारिक रूप से मिस्र को नष्ट कर दिया। उसने सैकड़ों हजारों मिस्रियों को मार डाला, लेकिन इसराइल को छोड़ दिया। उसने इसराइल को अपना दिव्य तोरह दिया और उन्हें अपने लोगों के रूप में अलग कर दिया। उसने उनकी भूख को संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन आकाश से भोजन बरसाया। उसने उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टानों से पानी निकाला। वह आग और बादल के एक खंभे में एक दृश्य तरीके से उनके साथ यात्रा करता था। लेकिन क्या हम कुछ अलग हैं ईश्वर के लोगों के रूप में, जिनके पास अब वास्तव में ईश्वर निवास कर रहे हैं? अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ एक अनंत भविष्य की गारंटी है, और अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि पृथ्वी पर हमारे कष्ट ईश्वर के राज्य के लिए एक महान उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं, अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं कि वह दिन बस कोने के आसपास है जब हमारा मसीहा यीशु वापस आने वाला है, तो क्या हम अभी भी अपना जीवन वैसे ही जिएंगे जैसे हम आमतौर पर जीते हैं? मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि ये इसराइली लोग, जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, हमसे अलग नहीं थे। वे भी सिर्फ लोग थे, अलग थलग लोग, परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए थे। लेकिन हमारी तरह उन्होंने भी परमेश्वर के वादों और उनके नियमों और आज्ञाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए संघर्ष किया, और जब उन्हें एक शानदार भविष्य के बारे में बताया गया तो कई बार उम्मीद जगी। लेकिन यह सब इतना धुंधला था, सब कुछ इतना दूर था, और इसे समझना और पकड़ना मुश्किल था। वे अभी में जीते थे, भविष्य में नहीं, ठीक वैसे ही जैसे हम जीते हैं, और कभी कभी सिर्फ आज को गुजारना ही काफी होता था। इसके अलावा उन्हें परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगातार लागू करने का सामना करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इसराइल के लिए परमेश्वर के सिद्धांतों को फिर से लागू करने के मामले में एकमात्र बड़ा बदलाव पुराने नियम से नए नियम की ओर था, मसीह के आने से पहले के समय से लेकर उसके आने के बाद के समय तक। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहां लैव्य व्यवस्था में उन्हें मिस्र में रहने के समय से भटकने के समय में बदलते हुए देखते हैं, गुलामी के समय से आजादी के समय में, फिरौन की सेवा के समय से लेकर यहोवा की सेवा के समय तक, और फिर थोड़ी देर बाद भटकने के समय से लेकर जमीन पर कब्जा करने के समय तक। आखिरकार वे तंबू से एक शानदार तंबू, एक मंदिर, एक शानदार लकड़ी और पत्थर की इमारत में बदल गए। वे परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं को उस स्थिति और समय से लेने के लिए संघर्ष करेंगे जब उन्हें मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था, मिस्र छोड़ने के एक साल बाद माउंट सिनाई पर, और उन नियमों और आज्ञाओं को नई परिस्थितियों में लागू करना जो मूसा के माध्यम से उन्हें दिए गए सीमित निर्देशों में ठीक से संबोधित नहीं किए गए थे। फिर भी यहोवा ने उनसे यही अपेक्षा की थी कि वे ठीक वैसा ही करें, और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक आध्यात्मिक सिद्धांत के उद्देश्य को बनाए रखें, चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। हम पुराने नियम तनाख में बार बार पाएंगे कि इसराइल के नेताओं ने परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्धांतों को निरस्त करने, बदलने, खारिज करने और उनके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि ये सिद्धांत बहुत पहले से थे और अब उन पर लागू नहीं होते, और इन नेताओं और उनके लोगों और पूरे इसराइल राष्ट्र के लिए परिणाम भयानक थे। परमेश्वर के लोगों के रूप में हम पर भी वही जिम्मेदारी है। हमें अपने समय के लिए परमेश्वर के वचन की पुनः व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि उन्हें वर्तमान स्थिति में पुनः लागू करना है। हमारी तात्कालिक परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील हैं, लेकिन यहोवा के सिद्धांत पूरी तरह से स्थिर हैं। यह इज़राइल के लिए सत्य था और वह हमारे लिए भी सत्य है और हमारे बाद आने वाले सभी लोगों के लिए भी सत्य है। अगले सप्ताह हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 14 के शेष भाग पर विचार करेंगे।